उस शाम जब आर्चर खाने से पहले नीचे आया, बैठक खाली थी। वो और मैं अकेले ही भोजन करने वाले थे। श्रीमती मैनसन मिंगोट की बीमारी के कारण सारे पारिवारिक जमावड़े टल चुके थे। दोनों में मैं ही अधिक समय की पाबंद थी, इसलिए उसे नीचे न पाकर आर्चर को अचरज हुआ। वो जानता था कि मैं घर में ही है, क्योंकि कपड़े पहनते समय उसने उसे कमरे में चलते फिरते सुना था। उसने सोचा कि आखिर उसे किस बात ने रोक रखा है। आर्चर अक्सर ऐसे छोटे छोटे अनुमानों में डूब जाता था। उसे लगता था कि ये अपने विचारों को यथार्थ से बांधे रखने का एक तरीका है। कभी कभी उसे लगता कि अब वो समझ गया है कि उसके ससुर मिस्टर वेलेंड मामूली बातों में क्यों उलझे रहते हैं। शायद बहुत पहले उन्होंने भी आर्चर जैसे भागने के आवेग और सपने जाने होंगे, और तब से घर गृहस्थी की दीवार के पीछे अपना बचाव करते आए हों। मैं आई तो आर्चर को वो थकी हुई लगी। उसने वही गहरे गले वाली कसकर बंधी शाम की पोशाक पहन रखी थी, जिसे मिंगोट परिवार की रीत सबसे अनौपचारिक अवसरों पर भी मांगती थी, और उसके सुनहरे बाल हमेशा की तरह परत दर परत ऊपर बंधे थे, पर उनके मुकाबले उसका चेहरा फीका और लगभग बुझा हुआ दिख रहा था। फिर भी उसने आर्चर को वही कोमल मुस्कान दी और उसकी आंखों में पिछले दिन की नीली चमक बाकी थी। क्या हुआ था प्रिय, उसने पूछा। मैं दादी के यहाँ इंतजार करती रही और एलेन अकेली आई। उसने कहा कि किसी जरूरी काम से तुम बीच रास्ते में उतर गए। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? बस कुछ चिट्ठियाँ थीं जो भेजी नहीं थीं, और खाने से पहले भेजना चाहता था। अच्छा, उसने कहा। फिर थोड़ी देर बाद, जरूरी न होता तो तुम दादी के यहाँ आ सकते थे। जरूरी ही था, आर्चर ने उसकी जिद पर हैरान होकर कहा। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी दादी के यहाँ क्यों जाता। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम वहाँ हो। मैं मुड़कर अंगीठी के ऊपर लगे आईने के पास चली गई। वहाँ खड़े होकर जब उसने अपनी लंबी बाहें उठाकर जटिल जूड़े से निकली लट को फिर से टांका, तो आर्चर को उसकी मुद्रा में कुछ सुस्त और निस्तेज लगा, और उसने सोचा कि कहीं उनके जीवन की एक रस्ता उस पर भी तो भारी नहीं पड़ रही। तभी उसे अचानक याद आया कि सुबह घर से निकलते समय मैंने सीढ़ी की रेलिंग के पार से पुकारा था, दादी के यहाँ मिलते हैं, वे साथ गाड़ी में लौटने वाले थे। उसने खुश होकर हाँ कह दिया था, पर दूसरे विचारों में डूबकर वो वादा भूल गया। अब उसे हल्का अपराध बोध हो रहा था, और साथ ही ये खीज भी कि शादी के लगभग 2 साल बाद भी मैं ऐसी छोटी सी चूक दिल में रख लेती है और उसे उलाहना देती है। वो इस गुनगुने वैवाहिक जीवन से ऊब चुका था, जिसमें जोश नहीं था पर मांगे पूरी थीं। अगर मैं अपनी शिकायतें जाहिर करती और उसे लगता था कि शिकायतें बहुत होंगी, तो शायद वो हंसकर टाल देता, पर उसे तो काल्पनिक चोटें भी स्पार्टा जैसी मुस्कान के पीछे छिपाना सिखाया गया था। अपनी झुंझलाहट छिपाने के लिए उसने दादी की तबीयत पूछी, और मैंने बताया कि श्रीमती मिंगोट लगातार सुधर रही हैं, पर बोफर दंपति से जुड़ी ताज़ा खबरों से कुछ विचलित है। कैसी खबरें? लगता है उन्होंने न्यूयॉर्क में ही रुकने का फैसला किया है। कहते हैं बोफर बीमा का काम करना चाहता है। वे कोई छोटा घर ढूंढ रहे हैं। ये बेतुकी बात चर्चा लायक नहीं थी और दोनों भोजन कक्ष में चले गए। खाने पर बातचीत उसी सीमित दायरे में घूमती रही, पर आर्चर ने ध्यान दिया कि पत्नी ने मैडम ओलेंस्का का जिक्र तक नहीं किया। वो आभारी था, फिर भी उसे कुछ अशुभ लगा। वे कॉफी के लिए पुस्तकालय में ऊपर गए। आर्चर ने सिगार सुलगाया और मिशले के इतिहास का एक खंड उठाया। उसने शाम को इतिहास पढ़ना इसलिए शुरू किया था कि कविता की किताब हाथ में देखते ही मैं उससे ऊंची आवाज में पढ़ने को कहने लगती थी। ऐसा नहीं कि उसे अपनी आवाज सुनना बुरा लगता हो, असुविधा ये थी कि वो हमेशा पहले से जानता था कि मैं आगे क्या कहेगी। सगाई के दिनों में ये अब जाकर उसने समझा। मैं केवल उसकी राय दोहराती थी। जब उसने राय देना बंद कर दिया तो वो अपनी राय कहने लगी, और इससे आर्चर की पढ़ी हुई रचनाओं का स्वाद बिगड़ जाता था। उसे इतिहास की किताब चुनते देख मैं अपनी सिलाई की टोकरी ले आई, हरे शेड वाले लैंप के पास कुर्सी खींची और पति के सोफे के लिए एक गद्दी काटने लगी। सुई धागे में वो बहुत निपुण नहीं थी। उसके बड़े और चुस्त हाथ घुड़सवारी, नौका चलाने और खुली हवा के कामों में ज्यादा फपते थे।
पर चूंकि दूसरी पत्नियां अपने पतियों के लिए गद्दियां काटती थीं,
वो समर्पण की इस आखिरी कड़ी को छोड़ना नहीं चाहती थी। आर्चर जरा नजर उठाता तो उसे कढ़ाई के फ्रेम पर झुकी देख लेता। चुन्नटदार आस्तीनें मजबूत बाहों से सरक आई थीं। बाएं हाथ में चौड़ी अंगूठी के ऊपर सगाई का नीलम चमकता था, जबकि दायां हाथ धीरे धीरे कपड़े में सुई चुभाता था। उसे यों बैठा देखकर लैंप की रोशनी में साफ उभरे माथे के साथ आर्चर ने गुप्त निराशा से अपने आप से कहा कि वो उस माथे के पीछे के विचार हमेशा जानता रहेगा। आने वाले सारे बरसों में वो उसे किसी नए मिजाज, विचार, कमजोरी, क्रूरता या भावना से कभी चौंकाएगी नहीं। अपनी सारी कविता और रोमानियत वो सगाई की छोटी अवधि में खर्च कर चुकी थी और जरूरत खत्म होते ही वो क्षमता भी बुझ गई। अब वो अपनी माँ की प्रतिलिपि बनती जा रही थी और ठीक उसी राह से उसे मिस्टर वेलेंड में बदलने की कोशिश कर रही थी। आर्चर ने किताब रखी और बेचैनी से उठ खड़ा हुआ। मैंने तुरंत सिर उठाया। क्या हुआ? कमरे में घुटन है, थोड़ी हवा चाहिए। उसने जिद करके पुस्तकालय के पर्दे एक छड़ पर टंगवाए थे ताकि उन्हें आगे पीछे खींचा जा सके। इस तरह बैठक की तरह सुनहरी पट्टी के नीचे जड़े और जालियों पर निश्चल रहने के बजाय वे शाम को बंद किए जा सकते थे। उसने पर्दा हटाया, खिड़की ऊपर उठाई और बर्फीली रात की ओर झुक गया। लैंप के नीचे मेज के पास बैठी मे से नजर हटा लेना और ये महसूस करना ही काफी था कि और भी घर हैं, छतें और चिमनियां हैं, उसके अपने से अलग जीवन है। न्यूयॉर्क के बाहर और शहर हैं और उसकी दुनिया के परे एक पूरी दुनिया है। इतने से ही उसका सिर हल्का हो जाता और सांस आसान हो जाती। वो कुछ मिनट अंधेरे में झुका रहा था कि मे की आवाज आई, न्यूलैंड, खिड़की बंद कर दो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसने खिड़की बंद की और मुड़ा। ठंड लग जाएगी, उसने दोहराया और मन ही मन ये जोड़ना चाहा, पर मुझे तो लग ही चुकी है, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, महीनों महीनों से मरा हुआ हूँ। तभी अचानक उन शब्दों ने उसके भीतर एक तीव्र कल्पना जगा दी। और अगर मरने वाली वही हो तो, अगर वो मरने वाली हो, जल्दी ही मरने वाली हो और वो आजाद हो जाए तो। गर्म जाने पहचाने कमरे में खड़े होकर उसे देखते हुए उसकी मृत्यु चाहना, ये भाव इतना विचित्र, इतना मोहक और अभिभूत कर देने वाला था कि उस विचार की भयावहता उसे तुरंत नहीं छू पाई। उसे बस लगा कि नियति ने उसकी बीमार आत्मा को टांगने के लिए एक नई संभावना दी है। हाँ, मैं मर सकती है, लोग मरते ही हैं, स्वस्थ नौजवान भी, उसके जैसे स्वस्थ लोग भी, वो मर सकती है और उसे एक झटके में आजाद कर सकती है। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गईं, मानो उसने आर्चर की नजर का अजनबीपन भांप लिया हो। न्यूलैंड, तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसने सिर हिलाया और आराम कुर्सी की ओर बढ़ा। मैं फिर फ्रेम पर झुक गई और गुजरते हुए उसने उसके बालों पर हाथ रखा। बेचारी मैं, उसने कहा। बेचारी? भला क्यों बेचारी? उसने तनी हुई हंसी के साथ पूछा। क्योंकि जब भी मैं खिड़की खोलूंगा तुम्हें चिंता में डाल दूंगा, आर्चर ने हंसते हुए कहा। वो एक पल चुप रही, फिर सिर झुकाकर धीमे से बोली, तुम खुश रहोगे तो मैं कभी चिंता नहीं करूंगी। अरे प्रिया, और मैं खिड़कियां खोले बिना कभी खुश नहीं रह सकूंगा, इस मौसम में, उसने विरोध किया। और आर्चर ने आह भरकर सिर किताब में गड़ा दिया। 6-7 दिन बीत गए। आर्चर को मैडम ओलेंस्का का कोई समाचार नहीं मिला और उसने ध्यान दिया कि परिवार में कोई भी उसके सामने उनका नाम नहीं लेता। उसने उन्हें देखने की कोशिश नहीं की। जब तक वे बूढ़ी कैथरीन के सिरहाने बैठी थीं, ये लगभग असंभव होता। इस अनिश्चय में उसने चीजों को बहने दिया। भीतर से वो जानता था कि जिस ठंडी रात वो पुस्तकालय की खिड़की से बाहर झुका था, उसी क्षण कुछ तय हो गया था। वो निश्चय इतना दृढ़ था कि वो बिना कोई संकेत दिए शांति से प्रतीक्षा कर सकता था। फिर एक दिन मैंने बताया कि श्रीमती मैनसन मिंगोट उससे मिलना चाहती हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। बूढ़ी महिला लगातार सुधर रही थीं और हमेशा खुलकर कहती थीं कि नाती दामादों में आर्चर उन्हें सबसे प्रिय है। मैंने ये संदेश प्रसन्न चेहरे से दिया। उसे गर्व था कि बूढ़ी कैथरीन उसके पति को इतना मानती है। थोड़ी चुप्पी के बाद आर्चर को लगा कि उसे उचित बात कहनी चाहिए। ठीक है, आज दोपहर 7 चले? पत्नी का चेहरा खिल उठा, पर उसने तुरंत उत्तर दिया, अरे तुम अकेले जाओ तो बेहतर होगा। दादी को एक ही लोगों को बार बार देखकर ऊब होती है। बूढ़ी मिंगोट के यहाँ घंटी बजाते समय आर्चर का दिल जोर से धड़का। वो सबसे बढ़कर अकेले आना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि ये मुलाकात उसे काउंटेस ओलेंस्का से अकेले में बात करने का मौका देगी। उसने तय किया था कि मौका अपने आप आने तक रुकेगा, और अब वो आ गया था। ठीक इसी क्षण वो दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके पीछे गलियारे के पीले दमास्क पर्दे के उस पार वे उसका इंतजार कर रही होंगी, और जल्दी ही वो उन्हें देख सकेगा। बीमार के कमरे में ले जाने से पहले वो उनसे बात कर सकेगा। आर्चर केवल एक प्रश्न पूछना चाहता था, फिर उसका रास्ता साफ हो जाता। वो वॉशिंगटन लौटने की तारीख पूछना चाहता था, और उस प्रश्न का उत्तर वे टाल नहीं सकती थी। पर पीली बैठक में वो दोगली नौकरानी खड़ी थी, जिसके सफेद दांत पियानो की चाबियों जैसे चमकते थे। उसने सरकता दरवाजा खोला
और उसे बूढ़ी कैथरीन के सामने पहुंचा दिया। वे बिस्तर के पास सिंहासन जैसी विशाल आराम कुर्सी पर बैठी थी। बगल में महोगनी की मेज थी, जिस पर नक्काशीदार लैंप और हरे कागज का शेड रखा था। हाथ की पहुंच में न किताबें थी, न अखबार, न ही किसी जनाना काम का कोई निशान। बातचीत ही उनका इकलौता शौक था, और कढ़ाई में दिलचस्पी का दिखावा करना वे तुच्छ समझती। आर्चर को उनके चेहरे पर लकवे का कोई निशान नहीं मिला। वे बस पीली दिख रही थी, झुर्रियों और मांस के गड्ढों में गहरी परछाइयों के साथ। दो ठोड़ियों के बीच कसकर बंधी झालरदार टोपी और बैंगनी ड्रेसिंग गाउन पर आड़ी रखी मलमल की चादर के साथ वे एक समझदार दयालु दादी लग रही थीं, जो शायद खाने पीने के सुख में कुछ ज्यादा ही रमी हो। उनके चौड़े घुटनों पर किसी पालतू जानवर की तरह उनका एक छोटा सा
हाथ टिका था। उसे बढ़ाते हुए उन्होंने नौकरानी से कहा, अब किसी को भीतर मत आने देना, मेरी बेटियां आए तो कहना कि मैं सो रही हूँ। नौकरानी के जाते ही वे नाती दामाद की ओर मुड़ी। बेटा, मैं बिल्कुल बदसूरत नहीं लग रही? और उन्होंने शरारत से छाती की मलमली सिलवटें टटोली, जहां अब हाथ नहीं पहुंचते थे। मेरी बेटियां कहती हैं कि मेरी उम्र में बदसूरत होना मायने नहीं रखता, पर जितनी बूढ़ी और बदसूरत होती जाओ, छिपाना उतना ही मुश्किल और उतना ही बुरा। दादी, आप पहले से भी शानदार लग रही हैं, आर्चर ने उसी लहजे में उत्तर दिया, और वे सिर पीछे झटक कर हंस पड़ी। हाँ, पर एलन जितनी तो नहीं, उन्होंने अचानक शरारती आंखों से उसे देखते हुए कहा, और उसके उत्तर देने से पहले ही जोड़ा, जिस दिन तुम उसे नौका घाट से लाए थे, वो भयानक खूबसूरत नहीं लग रही थी। वो हंस पड़ा, और वे बोलती रही, तुमने यही कहा, इसीलिए उसने तुम्हें बीच रास्ते उतार दिया। मेरे जमाने में नौजवान सुंदर औरत को छोड़कर नहीं जाता था, जब तक जबरदस्ती न निकाला जाए। वे फिर ठहाका मारकर हंसी और नाराजगी से जोड़ा, काश उसने तुमसे शादी की होती, तब मुझे ये सारी चिंता न होती। पर दादी की चिंता कम करने की सोचता ही कौन है? आर्चर ने सोचा कि कहीं बीमारी ने उनकी समझ धुंधली तो नहीं कर दी, पर वे बोल उठी, खैर अब तय हो गया, बाकी जो कहे कहे वो यही मेरे पास रहेगी। उसे आए 5 मिनट न हुए थे कि मैं उसे रोकने को घुटनों पर बैठना चाहती थी, बशर्ते 20 साल में मुझे दिखा होता कि फर्श कहाँ है। आर्चर चुपचाप सुनता रहा।
वे कहती रहीं, तुमने सुना ही होगा कि परिवार ने मुझे मनाने की कोशिश की। लवेल, लेटर ब्लेयर, ऑगस्टा वेलैंड सब कहते थे कि उसका खर्च बंद कर दूं और तब तक डटी रहूं जब तक वो न समझे कि उसे ओलेंस्की के पास लौटना है। जब वो सचिव आखिरी प्रस्ताव लेकर आया तो उन्होंने सोचा होगा कि मुझे जीत लिया। मानती हूँ प्रस्ताव अच्छा खासा था, आखिर विवाह विवाह है और पैसा पैसा, दोनों का अपना उपयोग है। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। वे रुकी और लंबी सांस छोड़ी, पर जैसे ही मैंने एलन को देखा, मन ही मन चीख पड़ी, प्यारी चिड़िया, तुझे उस पिंजरे में दोबारा बंद नहीं करने देंगे, तो अब वो मेरे जीते जी यहीं रहकर मेरी सेवा करेगी। बहुत खुशगवार भविष्य नहीं है, पर लगता है उसे परवाह नहीं। और हाँ, मैंने लेटर ब्लेयर से कह दिया है कि उसे ठीक ठाक गुजारा बांध दे। आर्चर सुनते हुए महसूस कर रहा था कि उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा है, पर उस क्षण वो इतना उलझा हुआ था कि ये भी तय नहीं कर पा रहा था कि ये खबर खुशी है या दुख। वो अपना रास्ता तय कर चुका था, इसलिए विचारों को फिर जमाना आसान नहीं था, पर धीरे धीरे ये मीठा एहसास उतरने लगा कि सुलझाने वाले सवाल टल गए हैं और उसे चमत्कार सी मोहलत मिल गई है।
उसने निष्कर्ष निकाला कि एलिन दादी के साथ इसलिए रुकी क्योंकि वो समझ गई थी कि उसे छोड़ नहीं सकती। कुछ दिन पहले की उसकी आखिरी विनती का यही उत्तर था। अगर वो उसका सुझाया चरम रास्ता नहीं लेना चाहती थी तो आखिरकार उसने एक बीच का रास्ता मान लिया था जो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था।
वो आर्चर अब इस विचार के हवाले हो गया और अचानक मिली राहत के साथ एक खतरनाक पर मीठी सुरक्षा का स्वाद लेने लगा। वे लौट नहीं सकती थी, ये असंभव था, आर्चर ने कहा।
अरे मेरे प्यारे, मैं जानती थी कि तुम उसके पक्ष में हो, इसीलिए आज बुलाया। तुम्हारी सुंदर पत्नी साथ आना चाहती थी तो मैंने कहा नहीं, मुझे असल में न्यूलैंड को देखना है अकेले में। और जानते हो क्यों? उन्होंने ठोड़ियों की इजाज़ भर सिर पीछे झटका और सीधे उसकी आंखों में देखा। क्योंकि हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई, परिवार उसे यहाँ नहीं रखना चाहता। सब कहेंगे कि मैं बीमार कमजोर बुढ़िया हूँ और उसने मुझे बहका लिया। मैं अभी एक एक से भिड़ने लायक नहीं, इसलिए तुम्हें मेरी ओर से लड़ना होगा। मैं? उसने हकलाकर कहा। हाँ क्यों नहीं, उन्होंने पलटकर कहा। उनकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। उनका हाथ कुर्सी की बांह से उड़कर उसके हाथ पर आया और पक्षी के पंजों जैसी पीली उंगलियों से कसकर पकड़ लिया। क्यों नहीं, उन्होंने कठोरता से दोहराया। उनकी नजर के नीचे आर्चर संभला। अरे मेरी तो कोई हैसियत नहीं, उसने कहा। बकवास, तुम लेटर ब्लेयर के साझेदार नहीं हो, उसी के जरिए उन तक पहुंच सकते हो। हाँ कोई और वजह हो तो बात अलग, उन्होंने दृढ़ता से कहा। चिंता मत कीजिए दादी, आप मेरी मदद के बिना भी उन्हें आसानी से हरा देंगी, पर जरूरत पड़ी तो मैं मदद करूंगा, उसने उन्हें आश्वस्त किया। तब तो हम बच गए, उन्होंने आह भरकर कहा और अपनी पुरानी चालाक मुस्कान के साथ
तकियों में सिर धंसाते हुए जोड़ा। मैं हमेशा जानती थी कि तुम हमारी तरफ रहोगे, क्योंकि जब भी परिवार कहता है कि उसे पति के पास लौट जाना चाहिए, कोई तुम्हारा हवाला नहीं देता। उनकी इस पैनी सूझ पर आर्चर जरा चौंका और मन ही मन पूछना चाहा, और मैं? क्या मैं का हवाला देते हैं? पर उसे प्रश्न टाल देना ही सुरक्षित लगा। और मैडम ओलेंस का, उनसे कब मिल सकूंगा? उसने पूछा। बूढ़ी महिला खिलखिलाई, पलकें सिकोड़ी और शरारती चेहरा बनाया। आज नहीं, एक बार में एक कृपया। मैडम ओलेंस का बाहर गई है। आर्चर निराशा से लाल हो गया और वे कहती रही, वह निकल गई, मेरी गाड़ी लेकर रेजाइना बोफर से मिलने गई है। बूढ़ी महिला ने इस घोषणा का असर होने तक प्रतीक्षा की। उसने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया है। यहाँ आने के अगले ही दिन उसने अपनी सबसे अच्छी टोपी पहनी और बड़े इत्मीनान से कहा कि वो रेजाइना बोफर से मिलने जा रही है। मैंने पूछा, ये कौन है? उसने कहा, आपकी नातिन, बहुत दुखी औरत। मैंने कहा, वो एक बदमाश की पत्नी है। और वो बोली, मैं भी तो एक बदमाश की पत्नी हूँ, फिर भी पूरा परिवार चाहता है कि मैं उसके पास लौट जाऊं। ये सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई और मैं उसे रोक नहीं पाई। कुछ दिन बाद उसने गाड़ी मांगी, कहा कि पैदल जाने के लिए बहुत बारिश हो रही है। किस लिए? मैंने पूछा। बोली, अपनी बहन रेजाइना से मिलने। बहन? मैंने खिड़की से बाहर देखा, एक बूंद तक नहीं गिर रही थी, पर मैं उसका मतलब समझ गई और गाड़ी दे दी। आखिर रेजाइना भी बहादुर औरत है और एलन भी, है ना? मुझे हमेशा से हिम्मत सबसे प्यारी रही है। आर्चर झुका और उस छोटे हाथ को चूम लिया जो अब भी उसके हाथ पर था।
अरे अरे, किसका हाथ चूम रहे हो? अपनी पत्नी का, यही उम्मीद है? उन्होंने खिलखिलाते हुए चुटकी ली और जब वो उठकर जाने लगा उन्होंने पीछे से पुकारा, उसे मेरा प्यार देना, पर हमारी बातचीत के बारे में कुछ न कहो, वही ठीक रहेगा।